हम प्रभु श्री रामचंद्र की लीला के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी श्लोक आया है, हम श्लोक गाएंगे और फिर हम चर्चा करेंगे। प्रार्थनाएं बोलते उसके पहले। ओम ज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ये श्लोक है, ये वेंकटेश स्तोत्र से है। ये प्रभु श्री रामचंद्र की महिमा के बारे में वर्णन कर रहा है। तो पहले मैं इसका अर्थ बताऊंगा, फिर हम उसको दोहराएंगे। सुमुखम सुरुदम सुलभम सुखदम सुमुख, मैं अर्थ बोलता हूँ पहले। सुमुखम प्रभु श्री रामचंद्र है, उनका चेहरा जो है बड़ा सुंदर है। और दुनिया में बहुत से लोग सुंदर होते हैं पर उनका हृदय सुंदर नहीं होता है। तो भगवान का न केवल चेहरा सुंदर है, उनका हृदय भी बड़ा सुंदर है, सुरुदम। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति होगा इस दुनिया में जो दिखने में भी सुंदर है और हृदय से भी सुंदर है, तो वो व्यक्ति को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत से लोग उस व्यक्ति के प्रेम की इच्छा करेंगे। पर भगवान जो है सुलभ, हम बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं उनको। सुमुखम सुरुदम सुलभम, और अगर हम उनसे संबंध जोड़ते हैं तो उस इस भौतिक जगत में हम बहुत से लोगों से संबंध जोड़ना चाहते हैं, कई बार संबंध जोड़ भी नहीं पाते हैं, और जोड़ भी लेते हैं तो बाद में वो संबंध से बहुत से परेशानियां आती है। पर भगवान से अगर हम संबंध जोड़ते हैं तो सुखदम, सुखदम मतलब हमें आनंद प्राप्त होता है। और ये प्रभु अकेले नहीं है, स्व अनुजम, उनके अनुज जो है लक्ष्मण, उनके साथ हमेशा आते जो सुखायम। तो न केवल उनका चेहरा सुंदर है, उनका संपूर्ण शरीर सुंदर है, अमोघ शरम। और न केवल सुंदर है वे, पर वे शक्तिशाली भी है। शर मतलब धनुष से निकलने वाले बाण होते हैं, तो अमोघ शरम मतलब उनके जो बाण है वो कभी अपना निशाना नहीं चूकते, कभी वो मोघ, मोघ मतलब व्यर्थ नहीं जाते हैं। तो अपहाय, तो ऐसे प्रभु को छोड़ के अपहाय रघुद्वहम, रघुवंश में जो सर्वश्रेष्ठ है, अन्यमहम किसी और व्यक्ति को, किसी और की मैं कभी आराधना नहीं करूंगा। कथंचन कंचन जातु भजे, कथंचन मतलब कि एक क्षण के लिए भी, कंचन मतलब किसी भी और व्यक्ति की न भज, जातु भज, जातु मतलब अवश्य, मैं किसी और की उपासना नहीं करूंगा। तो भगवान के ऐसे अनंत गुण है जिससे कि भक्त के हृदय को आकर्षित कर लेते हैं। तो कृपया दोहराइए। सुमुखम सुरुदम सुलभम सुखदम सुलभम सुखदम सुमुखम सुरुदम सुलभम सुखदम सुरुदम सुलभम सुखदम सुमुखम सुरुदम सुलभम सुखदम सुरुदम सुलभम सुखदम स्वनुजम च सुखाय ममोघ शरम च सुखाय ममोघ शरम स्वनुजम च सुकाय ममोघ शरम जम च सुकाय ममोघ शरम स्वनुजम च सुकाय ममोघ शरम च सुकाय ममोघ शरम अपहाय रघुद्वहमन्यमहम् अपहाय रघुद्वहमन्यमहम् रघुद्वहमन्यमहम् अपहाय रघुद्वहमन्यमहम् रघुद्वहमन्यमहम् न कथञ्चन कञ्चन जातु भजे न कञ्चन जातु भजे न कथञ्चन कञ्चन जातु भजे कञ्चन कञ्चन जातु भजे न कथञ्चन कञ्चन जातु भजे कञ्चन कञ्चन जातु भजे सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुकाय ममोघशरं च सुकाय ममोघशरं अपहाय रघुद्वहमन्यमहम् अपहाय रघुद्वहमन्यमहम् न कथञ्चन कञ्चन जातु भजे कञ्चन कञ्चन जातु भजे सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुकाय ममोघशरं सुकाय ममोघशरं अपहाय रघुद्वहमन्यमहम् अपहाय रघुद्वहमन्यमहम् न कथञ्चन कञ्चन जातु भजे कथञ्चन कञ्चन जातु भजे कोई दोहराना चाहेगा सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुकाय ममोघशरम् अपहाय रघुद्वहमन्यमहम् न कथञ्चन कञ्चन जातु भजे सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुकाय ममोघशरम् अपहाय रघुद्वहमन्यमहम् न कथञ्चन कञ्चन जातु भजे वैष्णवी सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुकाय ममोघशरम् अपहाय रघुद्वहमन्यमहम् न कथञ्चन कञ्चन जातु भजे हरे कृष्ण। तभी दो हफ्ते में श्री रामचंद्र के आविर्भाव रामनवमी उत्सव मनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमारी चेतना जागृत करने के लिए हम इस हफ्ते और अगले हफ्ते में राम कथा के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो प्रभु श्री रामचंद्र की लीला प्रधान और प्राथमिक रूप से वाल्मीकि रामायण में लिखी गई है, और उसके बाद में अनेक महान भक्तों ने वाल्मीकि रामायण पर टिप्पणी लिखी है या रामायण के अलग अलग दृष्टांत और वृत्तांतों का वर्णन किया है, और उससे प्रभु श्री रामचंद्र के बारे में जो लीलाएँ वर्णन है उसकी जो साहित्य है वो विशाल है। तो हम आज जो एक प्रसंग है रामायण में से, जो प्रभु श्री रामचंद्र को बोला जाता है कि आप वनवास जाओ, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है और ख़ास करके उनका और लक्ष्मण का जो संवाद होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और अगर समय मिलेगा तो उसके बाद में जब प्रभु श्री रामचंद्र चित्रकूट में जाते हैं और वहाँ पर भरत उनसे मिलने आते हैं, तो भरत और प्रभु श्री रामचंद्र उनमें जो संवाद है और उसमें जो भावनाएं हैं वो हम चर्चा करेंगे। अगर वो आज नहीं हो पाया तो फिर वो अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र उनका वो आविर्भाव अयोध्या में हुआ, और जब 16 साल के थे वे, तो पहली बार वो अयोध्या राज्य से बाहर गए विश्वामित्र के साथ, और विश्वामित्र ने ताटक और सुबाहु इनका वध करवाया प्रभु श्री रामचंद्र के द्वारा, और फिर मारीच उस समय भाग गया। और उसके बाद में विश्वामित्र मुनि ले गए प्रभु श्री रामचंद्र को मिथिला में, और जब मिथिला गए, मिथिला पुरजन मोहक राम, मिथिला के सब वासियों को उन्होंने आकर्षित कर दिया, और वहाँ पे त्रंबक कारमुक भंजक राम, उन्होंने जो त्रंबकेश्वर जो शिवजी थे उनका जो धनुष था, विशाल धनुष था, उसको बांधना था तो बांधते हुए इतनी शक्ति, बाकी किसी राजा को बांधने की भी शक्ति नहीं थी, पर प्रभु श्री रामचंद्र ने केवल उसको बांधा पर बांधते हुए टूट गया वो। और सीता अर्पित वरमालिक राम, फिर सीता ने अपनी वरमाला अर्पण की, सीता से विवाह हो गया उनका, और फिर वे वापस अयोध्या में आ गए। और जब अयोध्या में आके जी रहे थे इस तरह से, तो सभी अयोध्या वासियों के हृदय को उन्होंने जीत लिया। अगणित गुणगण भूषित राम, अवनीत नया कामित राम। अगणित गुणगण, इतने अगणित उनके गुण थे और उसे विभूषित थे, तो सब लोग उनसे आकर्षित हो गए। और उस समय जो एक बड़ा षड्यंत्र हो गया, दशरथ महाराज सोच रहे थे कि मैं मेरे ज्येष्ठ सुपुत्र जो है राम, उनको युवराज घोषित करके फिर राजा बनाऊंगा। तो कैकेयी का जो मन था वो मंथराणी दूषित कर दिया, और फिर उसके कारण कैकेयी ने बड़ा षड्यंत्र रचा के दो वर मांगे, जिससे कि प्रभु श्री रामचंद्र 14 साल वनवास में जाए और फिर भरत युवराज और बाद में राजा बन जाए। तो उस जब दशरथ महाराज ने सुना, तो दशरथ महाराज जो सुनते ही बेहोश हो गए। फिर बाद में जब होश में आए, तो उनको लग रहा था यह कोई खौफनाक सपना है या सत्य है। और फिर बाद में वे गिड़गिड़ा कर कैकेयी से बोलने लगे, जब कैकेयी का चेहरा जो था निष्ठुर भाव से दिख रहा, देख रहे थे उनकी ओर, तो वो समझ गए कि कोई सपना नहीं है, ये खौफनाक सपना नहीं, सत्य है, और सत्य जो है खौफनाक सपने से भी अधिक भयंकर है ये। तो फिर वो उसे बोलने लग गए कि अगर तुम चाहते हो कि भरत राजा बने तो मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मैं राम के बिना जी नहीं सकता, कृपया राम को मुझसे दूर जाने को मत कहिए, आप राम को मेरे साथ रहने दीजिए। तो मंथरा ने कैकेयी को माने पहले ही बहका दिया था। मंथरा बड़ी दूषित बड़ी कटु प्रवृत्ति की व्यक्ति थी, उसने बताया था कि अगर राम राज्य में हो गए तो फिर जो राज्य अयोध्यावासी है वो कभी भरत को राजा बनने नहीं देंगे, क्योंकि राम इतना लोकप्रिय है, तो इसीलिए ये अनिवार्य है, आवश्यक है कि राम को इस राज्य से बाहर निकाल दो आप, और 14 साल समय इतना पर्याप्त है कि उस समय में भरत राजा बनेगा तो भरत बहुत से भेंट दे सकता है, बहुत से सुविधाएं दे सकता है राजवासियों को, और फिर उससे उनका मन जीत सकता है। और उसके बाद में 14 साल के बाद भी अगर राम आ जाएंगे, तो भरत अगर लोकप्रिय बन गया है, भरत का अगर राज्य पे जो पकड़ है वो सुदृढ़ बन गई है, तो फिर कोई चुनौती नहीं रहेगी। तो इसलिए भरत महाराज का राज्य अगर आपको सुस्थापित करना है, तो ये आवश्यक है कि राम को वनवास में भेज दें। तो जब इस तरह से कैकेयी को बहकाया गया था, तो कैकेयी बिल्कुल निष्ठुर हो गया। ऐसे बताया गया जाता है रामायण में कि कैकेयी ये मृदु बुद्धिमान और सदय थी, सदय मतलब दयावान थी, तो मृदु मतलब वचन में बहुत ही मधुर बोला करती थी, और हृदय से दयावान थी और बुद्धि से बुद्धिमान थी, पर ये तीनों जो गुण थे सद्गुण दुर्गुण में परिवर्तित हो गए दुस्संग से। तो मृदु से वो कटु बन गई, बड़े कठोर शब्द बोलने लगी, बुद्धिमान से बुद्धिहीन बन गई, और दयावान से दयाहीन बन गई। तो यह सब जो प्रभाव हुआ वह केवल दुस्संग से हो गया। और फिर बड़ी निष्ठुरता से बोले कि तुमने जो वचन दिया है तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा। तो ये सब घटना जो हुई वो एक रात में ही हुई। तो प्रभु श्री रामचंद्र को पिछले दिन जब सभा बुलाई गई थी, तभी युवराज घोषित करने की योजना बनाई गई थी, और फिर उस रात को कौशल्या रात भर बैठ के धार्मिक कार्य कर रही थी ताकि भगवान विष्णु के आशीर्वाद उनके सुपुत्र पे हो सके। जब भगवान लीला करते हैं तो यह बहुत अद्भुत बात होती है कि वो लीला में जो सहभागी होते हैं उनको सदैव चेतना नहीं होती कि ये भगवान है। तो दशरथ महाराज या कैकेयी, कौशल्या या कैकेयी भी वो जानते नहीं थे कि ये भगवान है, वो उनको अपने पुत्र के समान समझते थे। तो यथा नटस्याकृतिभुर विचेष्टदार्थो, गजेंद्र की प्रार्थना में बताते हैं कि कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थना में बताती है भागवतम के पहले अध्याय के 8वें स्कंद में 19वें श्लोक में बोलती है कि माया जवनी का छन्नम अज्ञाधोक्षिजमव्यम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा, कि हे प्रभो आप जो लीलाएं करते हैं वो अज्ञानी व्यक्ति समझ नहीं सकते हैं। और विश्वनाथ चक्र ठाकुर हमारे महान आचार्य हैं, वह ये कैसे लोग समझ नहीं सकते हैं इसके लिए उदाहरण देते हैं। देखिए लोग अगर सामने ही भगवान है, भगवान की लीलाएं देख रहे हैं, तो कैसे वो भगवान की लीलाएं समझ नहीं पाते हैं। तो उदाहरण देते हैं कि अगर कोई भरतनाट्यम कर रहा है, अगर भरतनाट्यम आजकल का जो आधुनिक नृत्य होता है उसमें केवल हाथ पैर हिलाने होते हैं, और अगर वो हाथ पैर हिलाने का और कमर और सिर हिलाने का कुछ उद्देश्य होता है, वह क्या है, दूसरे व्यक्ति के वासनाओं को उत्तेजित करना। पर अगर भरतनाट्यम में क्या होता है, अगर कोई नृत्य करने वाले हैं, वो मान लीजिए दो नृत्य करने वाले हैं, वो यशोदा और कृष्ण है, इनके नृत्य को दर्शा रही है, तो फिर कोई हाथ हिलाता है, कोई चेहरे पे हाव भाव करता है, तो वो नृत्य दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, पर वो नृत्य क्या बता रहा है यह अगर समझना है तो पहले वो लीला के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें वो भगवान की माखन चोरी की लीला पता नहीं है तो भी वो नृत्य दिखने में अच्छा दिखेगा, पर नृत्य जो है उससे क्या बताया जा रहा है, क्या दर्शाया जा रहा है, वो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर भरतनाट्यम देख के समझना है और उसका अगर असली में रस आस्वादन करना है तो पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। पूर्व ज्ञान नहीं है तो दिखने में अच्छा दिखेगा पर समझेगा नहीं कुछ। तो ठीक उसे विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं कि भगवान की लीला ऐसे है, अज्ञाधोक्षजम अव्ययम, जो अज्ञ है वो देखते हैं भगवान की लीला को, और अगर उनमें थोड़ा सा भक्ति का भाव है, पुण्य भाव है, तो लीला बड़ी अच्छी लगती है। पर वो स्वयं भगवान है और भगवान ऐसे कार्य कर रहे हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि माया जवनी का छन्न। इसीलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अगर हमें भगवान की लीला समझनी है तो लीला देखने से लीला को श्रवण करना अधिक महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी को एक बार बताया गया कि आप कुछ रासलीला पे वर्णन क्यों नहीं करते, तो प्रभुपाद जी बोले पहले कुरुक्षेत्र लीला फिर रासलीला। पहले कुरुक्षेत्र लीला क्यों, कुरुक्षेत्र लीला में भगवद गीता के द्वारा हम भगवान कौन है, भगवान के तत्व को समझते हैं, और उसके बाद में जब भगवान की लीला है तो उनका गुह्य अर्थ हम समझ सकते हैं। तो अभी टीवी पे एक लिटिल कृष्णा नाम का सीरियल आ गया था, तो एक तरह से लोग मनोरंजन के रूप में कृष्ण को देख रहे हैं, छोटे से बालक कृष्ण को आकर्षित हो रहे हैं, अच्छा है मनोरंजन के स्तर पे, पर भगवान की लीला मनोरंजन के लिए नहीं है, भगवान की लीला चित्तरंजन के लिए है, हमारे आत्मा के शुद्धिकरण और उद्धार के लिए है। तो इसीलिए जब प्रभु श्री रामचंद्र लीला करते हैं तो उनमें जो सहभागी लोग हो रहे हैं सदैव उनको ज्ञात नहीं रहता है कि ये भगवान है। जो ऋषिगण होते हैं हम बाद में देखते हैं कि जब भरद्वाज मुखानंदक राम, भरद्वाज जब उनको देखते हैं तो वो उनको ज्ञात है कि ये भगवान है, पर फिर भी वे जानते हैं कि भगवान है पर ये नरलीला कर रहे हैं, इसीलिए वे भगवान से, भगवान उनको प्रणाम करते हैं तो वो प्रणाम स्वीकार करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भगवान जिस भाव में लीला कर रहे हैं उन्हें उनमें हमें सहभागी होना, उनको सहयोग करना चाहिए। तो कौशल्या जो होती है उस समय पूरे रात भर वो जाप तप करती है ताकि मेरे जो पुत्र है विकल युवराज बनने वाले हैं तो उन पे आशीर्वाद बरसाना चाहिए। और फिर जब सुबह होती है तो रात के समय कैकेयी के कमरे में प्रभु दशरथ महाराज जाते हैं और ये सुन के बेहोश आते हैं, और रात भर बेहोश होते हैं, होश में आते हैं, कुछ बात करते हैं, कैकेयी समझाने का प्रयास करते हैं, जब कैकेयी समझ नहीं पाती है तो पुनः बेहोश हो जाते हैं। फिर प्रातः का समय जब होने लगता है तो तभी जो दशरथ महाराज के मंत्री होते सुमंत्र, वो होते हैं कि आगे अगले दिन अभी सुबह हो रही है तो स्नान करना है और फिर पूजा अर्चन करनी है और फिर जो बड़ा अभिषेक होने वाला है उसकी तैयारी करनी है। तो इसीलिए वे कई कई के महल में आके ठकठकाते हैं। तो जब वो जो देखते हैं कि दशरथ महाराज उनके जो बाल है पूरे बिखर गए हैं और उनका जो चेहरा है, अगर कोई बार बार रोता है तो चेहरे पे निशान हो जाते हैं, तो चेहरे पे रोने के निशान दिखाई दे रहे हैं। और दशरथ महाराज ऐसे ऐसे विषम संकट में जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, और उनके बाजू में कैकेयी निष्ठुर भाव से बैठी हुई है। फिर वो हाथ जोड़कर दशरथ महाराज पूछते, क्या बात है, आपको आज तो अभिषेक है तो आनंद का अवसर है। तो समझते हैं कि बहुत कुछ तो भी विषम घटना होने वाली है। तो दशरथ महाराज कुछ बोल नहीं पाते। तो कैकेयी कहती है कि जो राजा है अपने पुत्र से मिलना चाहते हैं, तो उनको यहाँ राम को यहाँ पे बुला ले आओ। तो दशरथ महाराज की ओर देखते हैं सुमंत्र, दशरथ महाराज कुछ बोल नहीं पाते, थोड़ा सा अपना सिर हिला लेते हैं, कुछ समझ भी नहीं आता अभी क्या करना है। तो फिर सुमंत्र जाते हैं, सुमंत्र सोच रहे होते हैं कि ऐसी परिस्थिति क्यों हो सकती है और अभी रामचंद्र को क्यों बुलाया जा रहा है। पर फिर वो जाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र को बोलते हैं, तो जब प्रभु श्री रामचंद्र तुरंत उठ के आने लगते हैं तो वो जो रथ होता है रथ में बैठ के आते हैं। और जब वे कैकेयी के महल में प्रवेश करते हैं तो उस समय वे भी प्रभु दशरथ महाराज की दशा को देख के विचलित हो जाते हैं। और फिर वे प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, हे पिताश्री क्या समस्या है, आज तो आनंद का अवसर है, आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। तो कैकेयी बड़ी निष्ठुरता से कहते हैं, तुम्हारे कारण। तो ये वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र दुख का कारण नहीं है, कैकेयी का जो स्वार्थ है वो दुख का कारण है, तुम्हारे कारण। श्याम क्या बात है, जो भी आदेश है मैं जरूर पूरा करूंगा। तो फिर कैकेयी बोलते हैं कि जो राजा है वो तुमसे कुछ बताना चाहते हैं, डर लग रहा है कि तुम उनके वचनों का पालन नहीं करोगे, इसीलिए वो बोलने के लिए हिचकिचा रहे हैं। तो फिर कोई हिचकिचा नहीं, पिताश्री आप जो आदेश दोगे मैं पूरा करूंगा, श्री रामचंद्र बोलते हैं। और फिर दशरथ महाराज कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। और फिर कैकेयी देखते हैं कि समय जा रहा है, दशरथ महाराज कुछ बोल नहीं रहे, बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने, राजा ने मुझे वचन दिया था कि मेरे दो वचनों का पालन पूरे करेंगे, और मैंने वो दो वचन मांगे हैं कि है भरत राजा बनेगा और तुम 14 साल वन में जाओगे। तो प्रभु श्री रामचंद्र बिल्कुल भी अपने चेहरे पे कुछ दुख या वेदना नहीं दिखाते, इतनी छोटी सी बात है तो मैं तुरंत चला जाऊंगा बोलते। तो वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र उनके हृदय में भी दुख होता है, दुख इसलिए नहीं होता है कि राज्य जा रहा है, पर सोचते हैं कि जिन सब लोगों से मैं प्रेम करता हूँ, मेरी माँ है, मेरे भाई है, मेरे पिता है, उन सब से दूर जाना पड़ेगा। पर प्रभु श्री रामचंद्र तो भी सोचते हैं कि अगर मैं भी दुख दुखा दिखाऊंगा तो मैं पिताश्री पहले से इतने दुखी है, मैं उनके दुख को और बढ़ाना ही चाहता, इसीलिए वो अपने भावनाओं को पूर्णतः संयमित करते हैं। और वो कहते हैं कैकेयी की ओर मुड़के कि मैं तो सोचता था कि तुम मेरी माँ कौशल्या के समान ही हो, तो आज मुझे बड़ा दुख हुआ है ये पता चल के कि तुमने मुझे मेरे अपने पुत्र के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। तो कैकेयी थोड़ी सहम जाती है, तो क्या शायद राम मेरे बारे में कुछ बुरा भुला कहने वाला है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि अगर तुमने मुझे मेरे पुत्र के रूप में स्वीकार किया होता तो फिर एक राज्य के त्याग करने की छोटी सी बात को बताने के लिए तुम्हें पिताजी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम मुझे बोल देते मैं राज्य त्याग के तुरंत चला जाता था। और ऐसे वचन सुन के भी कैकेयी के हृदय पर कुछ प्रभाव नहीं हुआ। और दशरथ महाराज अपने पुत्र के व्यवहार को देखकर और भी मोहित हो गए, वो क्या बोले क्या कर पाए कुछ बोल नहीं पाए। तो उन्होंने अपने पिताश्री को प्रणाम किया, चरण को स्पर्श किया और फिर वो निकल गए। और सुमंत्र बाहर रुके थे और उनको लग रहा था कुछ तो भयानक घटना हो रही है। और प्रभु श्री रामचंद्र बाहर आए और सुमंत्र उन्हें रथ की ओर संबोधित किया, वो रथ से बाजू को हो गए और पैदल निकल गए। वो सोच रहे थे कि अभी मैं राजा नहीं बनने वाला हूँ, वन में जाना है तो रथ में अभी क्यों चढ़ना चाहिए। तो सारे जो राजमहल के सेवक सेविकाएं थे वो विचलित हो गए कि जो युवराज है बनने वाले हैं वो नंगे पैर जमीन पे क्यों चल रहे हैं, रथ में क्यों नहीं जा रहे हैं। और फिर जो कैकेयी के महल में जो सेवक सेविकाएं थे उन्होंने जो जानकारी बता दी और फिर वो सारे नगर में जानकारी फैलने लग गई। और प्रभु श्री रामचंद्र सोच रहे थे कि अभी सबको ये जानकारी बतानी है, कैसे बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले वो सोचा कि मैं जाके मुझे माँ को बताना पड़ेगा। तो वो कौशल्या के महल में गए और कौशल्या रात भर ऐसे बताया था तपस्या कर रही थी। तो जब प्रभु श्री राम से बोले, आओ राम, आज बड़े आनंद का दिन है, मैं तुम्हारे थोड़ा विष्णु प्रसाद लाती हूँ। तो फिर प्रभु श्री रामचंद्र बड़े गंभीर होकर बोले कि वास्तव में आनंद का समय भी अंत हो गया है, एक ऐसी घटना हो गई है माँ जिससे तुम्हें बड़ा दुख हो गया, तो कृपया अपने हृदय को स्थिर बनाओ और जो मैं बता रहा हूँ वो सुन लो। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र ने जो पूरा घटना हुई जो हुआ वो सब बताया, और इतना वो जो सदमा था कम कर सकते थे कम करके बता रहे थे। वो अंत में बताए कि हे माँ, इस दुनिया में समय तो ऐसे ही चले जाता है, ये 14 साल ऐसे ही चले जाएंगे और मैं पुनः तुम्हारे पास आ जाऊँगा, कृपया मुझे अपना आदेश दे दो ताकि मैं पिताजी का आदेश पालन कर सकूँ। तो जब कौशल्या ने सुना तो वो प्रसाद की थाली देखे थे, प्रसाद गिर गए उनके हाथ से और वो लगभग बेहोश होकर गिरने लग गए। तो प्रभु रामचंद्र ने उनको पकड़ लिया और वो कहने लग गए कि मैं कितनी अभागी हूँ कि मैं दशरथ महाराज की ज्येष्ठ रानी थी पर फिर भी कभी उन्होंने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, कहके उन्हें बहुत प्रिय थी, मैंने उसको सहन कर लिया, कहके इसलिए प्रिय थी तो इसके लिए भी इतना सारा दुख सहना पड़ा, पर जब मुझे तुम्हारे जैसे पुत्र मिल गया, बहुत समय तक मुझे पुत्र भी नहीं था, तो पति भी ध्यान नहीं दे रहे थे, पुत्र भी नहीं था, इतना दुख था मेरे लिए, पर बाद में बहुत तपस्या करने के बाद पुत्र मिला, वो भी पुत्र तुम्हारे जैसा पुत्र, अगणित गुणों से भूषित पुत्र, और जब तुम्हारे जैसा पुत्र जो राजा बनने के लिए हर तरह से योग्य है, ऐसा पुत्र जब युवराज राजा बनने वाला था तभी जो नियति सब कुछ मुझसे छीन के ले जाने वाली है। वो लेकिन कहके ही पुनः मुझ पर अपना जोर लगाएगी और मैं यहाँ पर जी नहीं सकूंगी। तो कौशल्या बोलने लग गई कि अगर तुम एक आदेश पालन करने वाले पुत्र हो तो अपने न केवल तुम्हें अपने पिता का आदेश पालन करना है पर तुम्हें अपने माँ का आदेश पालन करना है, और मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम राज छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें मेरा भी आदेश पालन करना। यहाँ तक शास्त्रों में बताया गया है, कौशल्या भी शास्त्र बोलने लग गई, शास्त्रों में बताया गया है कि माँ का अधिकार अपने पुत्र पर पिता से अधिक होता है, क्योंकि माँ ने अपने पुत्र को गर्भ में रखा है 9 महीने के लिए, तो मेरा आदेश है कि तुम जंगल में कभी नहीं जाओगे। तो फिर प्रभु श्री रामचंद्र इस तरह से जो कौशल्या भावनाओं से पीड़ित हो गई थी यह देखकर वह सहम गए और बड़ी शांति से प्रेम से बोलने लगे, हे माँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हृदय में क्या वेदनाएं हो रही है, पर मैं जरूर तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा, पर तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि एक पत्नी का उद्देश्य है कि अपने पति के धर्म में उसको सहयोग करे। तो मैं जानता हूँ, मैं मेरे पिता को देखा, मैं देखा कि पिताजी कितने दुखी थे, उन्होंने आनंद से ये कार्य नहीं किया है, और इस समय जब उनको समस्या हो रही है धर्म निष्ठ बनने के लिए, तुम्हें उनका सहयोग करना चाहिए, तुम्हें उनका विरोध नहीं करना चाहिए, तो कृपया मुझे मेरे पिताजी के धर्म के पालन करने में व्यत्यय मत डालो, कृपया मुझे विदा दे दो आप। तो कौशल्या समझ गए कि मेरे पुत्र से धर्म के बारे में मैं बहस में जीत नहीं सकती, तो बोले ठीक है, अगर तुम सोचते हो कि तुम जंगल में जाना है तो मैं भी तुम्हारे साथ जंगल में आऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम जो तपस्या करोगे मैं भी वही तपस्या करूंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं तुम्हारा विरह सहन नहीं कर सकती। फिर तभी प्रभु श्री रामचंद्र बोले कि हे माँ, आप जानती हो कि शास्त्र में बताया गया है कि पत्नी का जो संबंध है वो प्रथम अपने पति से है और बाद में पुत्रों से है, तो आज के समय में जो हमारे पिताजी है इतने दुखी है, इस समय में अगर तुमने त्याग दोगे तो उन्हें आश्रय कौन देगा, तुम्हें उनके साथ रहकर उनको आश्रय देना यह तुम्हारा परम कर्तव्य है, और माँ तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही समय में जाके आ जाऊंगा। और इसी बीच इस तरह से बातचीत चल रही थी तो कौशल्या समझ गई कि अभी ये अनिवार्य है, और प्रभु श्री रामचंद्र बोले कि मैं सीता लक्ष्मण को बोल के पुनः आऊँगा तुमसे मिलने को। और जब बाहर आ गए तो जानकारी सबको फैल गई थी, तो तभी लक्ष्मण को पता चल गया था, और लक्ष्मण कौशल्या के महल के बाहर खड़े थे और जो माँ और पुत्र के बीच में वार्तालाप हो रहा था वो सुन रहे थे, और लक्ष्मण ऐसे आग बबूले हो गए थे क्रोध से, और फिर जब रामचंद्र बाहर आए और लक्ष्मण को देखा, लक्ष्मण ने उनको प्रणाम किया, लक्ष्मण तुम यहीं पे हो, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। तो लक्ष्मण बोले कि मुझे पता है क्या हुआ है। और फिर रामचंद्र बोले कि अगर तुम्हें पता है तो अच्छा है, मैं सोचा था तुम्हें यह कैसे बताऊंगा, तुम्हें बड़ा दुख होगा। तो लक्ष्मण बोले मुझे दुख नहीं हो रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है। वे बोले कि ये बिल्कुल अन्याय है और मैं ये कदापि होने नहीं दूंगा, ताकि आज तुम्हारा अभिषेक होके ही रहेगा और जो भी ये अभिषेक के बीच में आएगा वह मेरे तीरों से यम के लोक में चला जाएगा। और यहां तक कि अभी लक्ष्मण का क्रोध इतना बढ़ गया था, वो मूर्ख राजा बीच में आ जाएगा तो मैं उसको यमलोक में भेज दूंगा। तो प्रभु श्री रामचंद्र क्रोधित हो गए, बोले अपने अपने पिता के प्रति ऐसे वचन तुम कैसे बोल सकते हो, अगर तुम्हारे तीर हमारे पिता के शरीर में जाओगे तो उसके पहले वो मेरे शरीर में से जाएंगे और फिर मुझे यमलोक में बैठ के तुम्हें जो राज्य इतना प्रिय है तुम उस सिंहासन पर बैठ जाओ। तो फिर ये सुन के लक्ष्मण थोड़े शांत हो गए, वो कहने लगे कि प्रभु श्री रामचंद्र अभी ये कौशल्या के महल से वे जा रहे थे सीता देवी के महल की ओर, प्रभु श्री रामचंद्र जहाँ पर रहते थे उसके ओर, तो जाते हुए बात कर रहे थे। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र बोले कि वास्तव में जो हमारे पिताजी के धर्मनिष्ठता है उसको बरकरार हमें रखना चाहिए। तो लक्ष्मण अभी तक बहुत क्रोधित थे, बोले कहाँ की धर्मनिष्ठता है ये कि जो हर तरह से सद्गुण संपन्न नेक पुत्र है उसके बिना किसी दोष के जंगल में भेजा जा रहा है उसे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पिताजी है वो काम वासना के प्रभाव में आके उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो कैकेयी के प्रलोभन से उनकी बुद्धि अष्ट हो गई है और उसके कारण उन्होंने ऐसा आदेश दिया है जो हर तरह से धर्म के खिलाफ है। तो प्रभु श्री रामचंद्र बोले हे लक्ष्मण तुम तो जानते हो कि कैकेयी तुम्हें और मुझे भरत के समान ही प्रेम किया करती थी। वो कैकेयी का जो हमारे प्रति प्रेम था वो एक निर्मल सुमधुर गंगा के समान था। तो लक्ष्मण अभी तक क्रोधित थे, बोला वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक रात में गंगा सूख कैसे गई। एक रात में सारा जो कैकेयी का प्रेम था वो ऐसे धूर्तता और नफरत में कैसे परिवर्तित हो गया। तो प्रभु श्री रामचंद्र बोले है कि नियति कैसे कार्य करती है ये हम समझ नहीं सकते हैं, इसीलिए जब कैकेयी के मुख से मैं ऐसे वचन सुने तो मैं समझ गया कि ये कैकेयी नहीं बोल रही है, ये नियति की इच्छा है। और अगर नियति की इच्छा है, दैव की इच्छा है, तो दैव की इच्छा के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। तो प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण को शांत करने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए सोचे कि हम दैव के बारे में बोले दैव अनिवार्य है। तो लक्ष्मण शांत नहीं हुए, लक्ष्मण बोले कायर ही ऐसे लोग होते हैं जो अन्याय को दैव के नाम पर स्वीकार करते हैं, क्षत्रिय जो है वो कभी अन्याय को स्वीकार नहीं करते हैं और हम हमारे शस्त्रों को उठाकर इस अन्याय का प्रतिकार करेंगे। क्यों हम निशक्त व्यक्ति के समान अन्याय को नियति के रूप में स्वीकार करेंगे। तो इसके बाद जो नियति कर्तव्य इसके बारे में बड़ा सुंदर बहस और बातचीत होती है लक्ष्मण और प्रभु श्री रामचंद्र में। तो यहाँ पे दो विचारधाराएं हैं और हम देखते हैं वैदिक शास्त्रों में ये दो विचारधाराएं हमेशा चलती आ रही है, एक है कर्मवाद और दूसरा है दैववाद। कर्मवाद का क्या है, तो यहाँ पे जो लक्ष्मण है वो कर्मवाद का प्रतिपादन कर रहे हैं। कर्मवाद मतलब क्या है कि हम हमारे कर्म करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो जरूर हमें फल मिलेगा, तो जो हमारा फल है हमारे कर्मों पे निर्भर है। और प्रभु श्री रामचंद्र दैववाद के बारे में वर्णन करते हैं। दैववाद क्या है कि वास्तव में जो इस हमें दुनिया में जीवन में मिलने वाला है वो दैव से निर्धारित हो चुका है और हम हमारे प्रयास से इसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो वास्तव में दोनों प्रकार के विचार वैदिक शास्त्रों में आते हैं पर इन दोनों का समन्वय है। तो आधुनिक जो विचारधारा है अधिकांश रूप से क्या है, कर्मवाद है कि हम अगर मेहनत करोगे, मैं अगर अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो मैं जरूर एग्जाम में बहुत अच्छे गुण लेके आऊंगा, मैं अच्छी तरह से मेहनत करूंगा तो मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। तो ये एक तरह से हमें सत्य लगता है, लक्ष्मण इसी का प्रतिपादन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई अधिकार है, अगर तुम्हारा अधिकार है राजा बनना, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम्हारा अधिकार है, और तुम्हारे अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना यह तुम्हारा कर्तव्य है, और तुम्हारे अधिकार को प्राप्त करने के लिए तुम संघर्ष नहीं करोगे तो यह दैव को स्वीकार करना नहीं है, यह कायरता है। प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं कि वास्तव में कि अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है जिसके कारण हमारे शक्ति के परे ऐसे कोई प्रभाव आ रहे हैं जिससे कि हमें फल नहीं मिल रहा है, तो हमें उसको दैव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें खामखा उसके खिलाफ संघर्ष करके हमारे शक्ति को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। तो ये बड़ा सुंदर और तत्व, वास्तव में यहाँ पे परिस्थिति ऐसी है कि लक्ष्मण क्रोध से भरे हुए हैं और प्रभु श्री रामचंद्र दुख से भरे हुए हैं, पर दुख दिखा नहीं रहे हैं, और दोनों भावनाओं के प्रभाव में हैं। पर असाधारण हमारे हमारे हम जब भावनाओं के प्रभाव में आते हैं तो क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है। अब हम क्रोध में आ जाते हैं, कुछ बोलते हैं, बाद में कोई हमको रिकॉर्डर लेके आएगा, ये तुम बोले, मैं बोला है, कैसे बोला, बाप रे, ऐसे हो जाता है वो। हाँ, हम जब भावनाओं के वश में चले आते हैं तो क्या होता है, हम ऐसे चीज़ें बोल बैठते हैं कि हम जिंदगी भर कभी उसके बारे पछताते हैं। पर वैदिक संस्कृति में सब लोग इतनी जो सुसंस्कृत थे कि जब भावनाओं के प्रभाव में आ जाते हैं तो भी वो भावनाओं को सही सिद्ध करने के लिए तत्वज्ञान बता रहे हैं, ना ऐसे कोई गालियां दे रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं। तो जो वाद है तो इसमें क्या है, ये समझने के लिए, क्या दैव श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है? तो ये लक्ष्मण कह रहे हैं कि कर्म श्रेष्ठ है, हमारा कर्तव्य करना हमें जरूरी है, और प्रभु श्री रामचंद्र कह रहे हैं कि जो हमारी नियति में मिला है उसको स्वीकार करना जरूरी है, नहीं तो हम खमखा हमारी शक्ति गंवा देंगे। तो वास्तव में सत्य क्या है इस समझने के लिए जो कुर्म पुराण है उसमें एक सुंदर उदाहरण देते हैं। कुर्म पुराण बताया है कि कर्म, दैव और काल, ये तीनों के समन्वय से फल की प्राप्ति होती है। कर्म, दैव और काल। और उसके लिए उदाहरण है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, जब खेती कर रहा है तो पहले जमीन को तैयार करना, फिर उसमें बीज डालना, वह सब कर्म है, यह कर्म का भाग है। और उसके बाद में समय पर पर्याप्त मात्रा में बारिश आना, यह दैव है। तो जब जो किसान कर्म करता है अच्छी तरह से, जो खेती करता है, बीज डालता है, वो जब अपना कर्म करता है, उसके बाद में जब दैव के अनुसार बारिश आती है और उसके बाद में काल का प्रवाह होता है, जैसे ही बीज डालेंगे तुरंत अन्न नहीं आता है, अनाज नहीं आता है, जैसे ही बारिश तुरंत भी अनाज नहीं आता है, समय लगता है, काल का प्रभाव होता है। तो कर्म, दैव और काल, इन तीनों के समन्वय से, इन तीनों के संगम से फल आता है। और अब इनमें से अगर एक नहीं है, कर्म नहीं है, अगर किसान सोचता है मैं इतनी मेहनत करूंगा और बाद में बारिश आई नहीं तो सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी, तो इसे मेहनत करूँ ही क्यों मैं, ऐसे सोचता है, तो फिर क्या होगा, अगर बारिश आ भी गई तो भी उसको खेती नहीं मिलेगी, सिर्फ कांटे वाले झाड़ वहां पे आ जाएंगे। और दूसरी ओर अगर सोचता है मैं मेरी मेहनत से ऐसा अनाज पकाऊंगा कि इस शहर का मैं सबसे रईस किसान बन जाऊंगा, और बड़ा मेहनत करता है, अच्छे से खेती करता है, बाद में बारिश ही नहीं आती है, तो वो भी कुछ फल नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो कर्म है वो मानव के हाथ में है और जो दैव है वो मानव के हाथ में नहीं है, वो अभी वो भगवान के हाथ में है। और भगवान जो करते हैं वह ऐसे नहीं है कि किसी अपने स्वेच्छा से जैसे मन में आए वैसे कर रहे करते हैं। जो दैव है वो वास्तव में हमारे ही कर्म का फल है और हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमें जो फल मिलने वाला है वही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें कर्म करना जरूरी है, पर हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कभी कभी हमारे शक्ति के परे ऐसी चीजें हो सकती है। अभी किसान के हाथ में नहीं है कि बारिश आएगा कि नहीं। तो आधुनिक विचारधारा क्या है कि अगर कोई विद्यार्थी है, पढ़ाई कर रहा है, पर फिर भी अगर ऐसे कुछ सवाल आते हैं कि उसने पढ़ाई नहीं की है, अच्छी तरह से मेहनत कर रहा है कोई व्यक्ति कंपनी में, पर कंपनी डूब जाती है, तो फिर क्या होता है, वो व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं बिल्कुल निकम्मा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पाता। असल में वो निकम्मा नहीं है, उस ये समझ नहीं पा रहा है कि हमारे यश में हमारा कर्म ये इकलौता इकलौता का योगदान नहीं देता है, उसके अलावा अनेक कार्य अनेक चीज़ें भी हैं जो योगदान देती हैं। तो बाद में जब ये बहस काफ़ी समय तक चलता है, बाद में पुरुषी रामचंद्र बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं दैव क्या है इसकी परवाह नहीं करता हूँ, पर मैं मेरा कर्तव्य क्या है इसकी परवाह कर रहा हूँ। और तुम सोच रहे हो कि हमें हमारे पिता के खिलाफ जाना चाहिए, पर मैं सोच रहा हूँ, तुम सोच रहे हो कि मैं युवराज हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं युवराज नहीं, मैं प्रथम मेरे पिता का पुत्र हूँ और मेरे पिताजी की इच्छा से मैं युवराज बनूंगा, और अगर मेरे पिताजी की इच्छा नहीं है तो मैं युवराज नहीं बनूंगा। और अगर तुम मुझे अप्रसन्न नहीं करना चाहते हो तो फिर तुम इसके खिलाफ मत जाओ। तो लक्ष्मण सोच रहे हैं, इस समय सारे समय लक्ष्मण क्या सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि प्रभु श्री रामचंद्र की भी इच्छा है कि राजा बनना है, पर वे धर्म के कारण खुद को हिचकिचा रहे हैं। पर जब इस तरह से बर्ताव होता है और वाद होता है एक तरह से, और फिर बाद में प्रभु श्री रामचंद्र बोलते हैं कि मेरी वास्तव में एक ही इच्छा है कि मेरे पिताजी के आदेश का पालन करूं, तो फिर इस तरह से जब बोलते हैं तो प्रभु लक्ष्मण थोड़े शांत हो जाते हैं। फिर भी अभी तक क्रोध उनमें बहुत है, पर वो सोचते हैं कि मैं मेरे बड़े भाई को कभी अप्रसन्न नहीं कर सकता, तो अगर मैं यहाँ पे क्रोध करूँगा, दशरथ महाराज के खिलाफ जाऊँगा तो क्या होगा, वे अप्रसन्न हो जाएंगे और मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। तो इसीलिए वे अपनी अप्रसन्नता को दबा लेते हैं ताकि अपने भाई को अप्रसन्न बनाए। फिर बाद में प्रभु श्री रामचंद्र सीता के कमरे में जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो सीता उनको स्वागत करती है, पर जैसे ही सीता प्रभु श्री रामचंद्र के चेहरे को देखती है, वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र अपने चेहरे पर कुछ भी भावनाएं नहीं दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, पर सीता उनकी पत्नी है, पत्नी अपने पति के चेहरे को तुरंत समझ जाती है। बोलते क्या बात है, क्या आप आनंद का अवसर है, आप इतने विचलित क्यों लग रहे हो। तो प्रभु श्री रामचंद्र सब कुछ उनको बताते हैं, और जब सीता ये सुनती है तो प्रभु श्री रामचंद्र सारा बात पूरी करते हैं और वो कहते हैं कि हे सीता, अभी मुझे जंगल जाना पड़ेगा, और जब जंगल जाऊंगा मैं तो तुम यहीं पे रहना और तुम जो मेरी माँ हैं कौशल्या, उनकी सेवा करना, क्योंकि उनको जब मेरे विरह में रहेंगे तो उनको बहुत दुख होगा, तो कृपया तुम उनको उनको दुखों से सांत्वना देना। और फिर जब ऐसे बताया जाता है तो सीता बोलते हैं, प्रभु आप क्या कह रहे हो, जब मेरे पिताजी ने, जनक महाराज ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दिया तो मुझे बताया कि हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देना चाहिए, तो आज अगर तुम जंगल में जा रहे हो तो तुम जंगल में जाके पेड़ों के नीचे सोओगे और मैं राजमहल में सोऊंगी, ये कैसे संभव है, तुम जंगल में जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जंगल में जाओगे। ऋषि रामचंद्र कहते हैं, हे सीता, जंगल तुम्हारे जैसे है कोमल शरीर के स्त्री के लिए नहीं है। और वहाँ पे रामायण में इस समय प्रभु श्री रामचंद्र जंगल में तपस्या जो होती है उसका वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, जंगल में कभी हमें खाने को कुछ फल मिलेंगे या नहीं, जो फल मिलेंगे वो वास्तव में जहरीले हैं या अच्छे हैं, पता नहीं हमें पीने को पानी मिलेगा कि नहीं, पानी अच्छा है या दूषित है ये पता नहीं। जंगल में जब हम जाते हैं तो जब ज़मीन पर कांटे हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, शेर, हाथी, सिंह, बड़े भयानक जानवर हो सकते हैं, और वास्तव में जो बाद में अगर हम अरण्यकांड पढ़ते हैं तो जो जंगल का वर्णन है काफ़ी सुंदर वर्णन है, पर यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जंगल का बहुत भयानक वर्णन करके सीता को डराने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं वहाँ पे बड़े खौफनाक राक्षस होते हैं, तो प्रभु श्री रामचंद्र राक्षसों का वर्णन करने लगते हैं, और फिर वो सोच रहे हैं कि इस तरह से सीता को बताया कि तुम जंगल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत आओ, तुम न कि ज़रूरत नहीं है पर तुम आओ भी मत। और वो कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं सीता से कि जहाँ तक कि तुम्हारे कर्तव्य की बात है तो हाँ, तो एक पत्नी का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपने पति के आदेश का पालन करना, तो मेरी इच्छा है कि तुम कौशल्या की यहाँ पर रहकर सेवा करो। तो सीता जब ये सब सुनती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे साथ हो गए तो जंगल में कितनी भी संकटे हैं मैं उनके सामने जा सकता हूँ, पर अगर आप मेरे साथ नहीं होगे तो आपसे जो विरह है वो जंगल के कितने बड़े संकट है उनसे अधिक भीषण अग्नि के समान है, मैं उनको सहन नहीं कर पाओगे। और जहाँ तक कौशल्या माता की बात है, वो बोले कि मेरी जो बहनें हैं, उर्मिला है, वो आप जानते हैं कि चारों भाइयों की चारों बहनों से विवाह होता, कि मैं उनको बोल दूंगी उर्मिला और आदि मेरी बहनें हैं, वो कौशल्या का बहुत अच्छा सेवा कर पाएंगे। और फिर जब प्रभु श्री रामचंद्र वहाँ, ये भी बहुत विस्तार में संवाद है रामायण में, हम बड़े संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं, पर बाद में प्रभु श्री रामचंद्र देखते हैं कि सीता यह विचार के इस विचार से ही कि प्रभु श्री रामचंद्र से विरह हो जाएगा, इस विचार से ही विचलित हो गई है और सोचने लगे अगर 14 साल विरह में रहेगी तो फिर वो कितना विचलित हो जाएगी, और इसीलिए और सोच के क्या कहते हैं कि ठीक है अगर तुम आना चाहती हो तो ज़रूर आओ मेरे साथ, और अगर आना है तो हम कुछ धन संपत्ति साथ में ले सकते, और तुम्हारा जो भी ऐश्वर्य है इस महल में वो सब ब्राह्मणों को दान दे दो और उनका आशीर्वाद स्वीकार कर लो, और आशीर्वाद स्वीकार करके तुम मेरे साथ आ जाओ। तो यह सब पति पत्नी में बात हो तो लक्ष्मण बाहर रुके होते हैं, पर लक्ष्मण समझ जाते हैं क्या चल रहा है। और फिर जब लक्ष्मण बाहर प्रभु श्री रामचंद्र बाहर आते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे प्रभु मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, मतलब तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जो वनवास का आदेश था वो मेरे लिए था, तुम्हारे लिए नहीं है। तो लक्ष्मण बोलते हैं वास्तव में मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और तुम्हारी सेवा करूँगा। फिर प्रभु श्री रामचंद्र उनको मनाने के लिए बोलते हैं कि वास्तव में अभी हमें यहाँ तुम्हें यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कैकेयी का अधिराज्य हो जाएगा तो फिर कैकेयी हमारी माँ कौशल्या या सुमित्रा के प्रति अत्याचार भी कर सकती है। वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र ऐसा सोच नहीं रहे कैकेयी के बारे में, बोले कर सकती है, इसीलिए तुम्हारे राज्य में होना बहुत ज़रूरी है। तो लक्ष्मण बोलते आप उसकी चिंता मत करो, मेरे बहुत से जासूस इस राज्य में हैं और कहके किसी का एक बाल भी बाका करेगी तो जासूस मुझे जंगल में संदेश भेज देंगे और मैं कुछ ही समय में आके यहाँ पे सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो वास्तव में लक्ष्मण भी अपने जो वचन है उसे बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे हैं। बाद में फिर प्रभु श्री रामचंद्र स्वीकार कर ले लक्ष्मण को, और फिर लक्ष्मण को बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ और अपनी माँ और अपनी पत्नी को तुम ये बोलो और फिर तुम आ जाओ। तो फिर वो जब सुमित्रा के पास जाते हैं, सुमित्रा को ये जानकारी पहले ही मिल गई है, और जानकारी मिल गई है तो उस समय जैसे ही लक्ष्मण प्रवेश करते हैं तो लक्ष्मण बोलते हैं कि हे माता जी मैं तुम्हें कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, बोले मैम ये पता है सब कुछ क्या हुआ है। बोलते हैं कि हे लक्ष्मण अगर तुम जंगल में जाते हैं तो मैं तुम्हें मेरे पुत्र के रूप में ठुकरा दे रही थी, तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम्हारे बड़े भ्राता है उनके साथ रहना और हर समय में उनका सहयोग करना, उनकी सेवा करना, और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि तुम अपने कर्तव्य से हिचकिचा नहीं रहे हो, मुझे बड़ा दुख होगा कि तुम यदि नहीं जाते, पर आज तुम जा रहे हो तो मुझे दुख हो रहा है पर मुझे नाज भी हो रहा है कि तुम एक कितने कर्तव्यनिष्ठ पुत्र हो। इस तरह से जब सारी जानकारी हो रही है, सारी बातचीत हो रही है, तो फिर ऋषि राम लक्ष्मण जो होते हैं वो जाते हैं अपनी जो पत्नी धर्मपत्नी होती है उर्मिला के पास। तो जब उर्मिला को सब कुछ पता चल गया है, सारे वास्तव में ये सारी जानकारी सारे शहर में फैल गई होती है, और सारे शहर में जो लोग होते हैं वो कहके कोस रहे होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ तक कि दशरथ महाराज को भी कोस रहे होते हैं। और फिर जब उर्मिला का जाते हैं तो उर्मिला को बोलते हैं तो उर्मिला कहती है कि हे प्रभु अगर आप जाओगे जंगल में तो मैं भी आपके साथ जंगल में आऊँगी। तो अगर सीता को ये मान मिल रहा है कि वो अपने पति के साथ जाए तो मुझे भी ये मान मिला जाए कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। तो लक्ष्मण सोच में पड़ जाते हैं, लक्ष्मण बोलते हैं कि हे वास्तव में अगर तुम सही में मेरे पत्नी का कर्तव्य निभाना चाहती हो तो तुम सोचो कि मेरी सबसे अधिक जरूरत क्या है। मैं जंगल में जा रहा हूं इसलिए कि प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा करने के लिए। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम्हारा तो प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा बाजू को रह जाएगी, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी पड़ेगी और मैं मेरी जो सेवा है कर नहीं पाऊंगी। तो उर्मिला कहते हैं कि वास्तव में तुम्हें मेरी कोई देखभाल नहीं करनी पड़ेगी, वास्तव में तुम जाके जंगल में फल और जड़ी बूटियां जब ढूंढ के आओगे और रात को जब आओगे तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी और तुम्हारे पैर दबाओगे और तुम्हारी सांत्वना दूंगी तो ताकि तुम शांति से विश्राम कर सके। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि जंगल में मेरे लिए कोई विश्राम का समय नहीं होने वाला है, दिन भर मैं लकड़ियां फल जड़ी बूटियां लाने जाऊंगा और रात भर मैं जाग के लक्ष्मण और सीता का संरक्षण करने वाला हूं, तो लेटने के लिए समय ही नहीं होगा मेरे लिए। और तुम अभी सोचो कि वास्तव में एक पुत्र के दो कर्तव्य होते, मैं एक छोटा भाई हूं तो मेरा एक कर्तव्य मेरे बड़े भाई की ओर है और दूसरा कर्तव्य है मेरे माता पिता की ओर। और जब तक दोनों एक ही समय में थे, एक ही जगह में रह रहे थे, एक ही महल में थे, तो मैं खुद दोनों कर्तव्य पूरा कर पा रहा था। पर आज जब लक्ष्मण जब मेरे भाई है बड़े भाई रामचंद्र जंगल में जा रहे हैं तो मेरे दो कर्तव्य मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं जंगल में जाऊंगा तो मैं मेरे बड़े भाता के प्रति से कर्तव्य कर पाऊंगा पर मैं मेरे पिता और माता के प्रति कर्तव्य नहीं कर पाऊंगा। और तुम मेरी अर्धांगिनी हो तो तुम्हें मेरे कर्तव्य में मेरा सहयोग करना चाहिए, तो इसीलिए तुम इस महल में रहो और मेरे जो पुत्र के रूप में मेरे माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उनकी सेवा करना, उनको सांत्वना देना, यह कर्तव्य तुम पूरा करो। तो फिर इस उनकी उर्मिला शांत हो जाती है। फिर लक्ष्मण जब जा रहे होते मेरा तुमसे एक निवेदन है कि मैं जब 14 साल जंगल में जाऊंगा तो कृपया तुम मेरे विरह में आंसू मत बहाओ। तो ये सुन के ही उर्मिला के आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो कहते हैं, हे प्रभु, मेरा तुम्हारे साथ जाने का अधिकार आपने छीन लिया है पर आपके विरह में होने का आंसू भी बहाने का भी अधिकार आप छीन लेते हो, तो ये कैसे संभव है? तो लक्ष्मण कहते हैं कि वास्तव में हमें अधिकार की बात नहीं करनी है, हमें सेवा की बात करनी है। तो हमारे सेवा के लिए हमें जो भी उचित है वो करना है। तो है कि अगर मैं मेरे अधिकार की बात कर रहा होता तो अभी प्रभु श्री रामचंद्र को जंगल में जाते हुए देखकर मैंने अभी तक आंसू की गंगा बहा दी होती, पर आंसुओं से हमारी सेवा नहीं हो पाएगी। तो अगर तुम यहाँ पे रह रहे हो महल में तो तुम रह रहे हो इसलिए कि तुम हमारे माता पिता की सेवा कर सको। और मैं राम के विरह में दशरथ महाराज कहके कौशल्या और सुमित्रा ये पहले से दुखी रहेंगे और तुम्हें यहाँ पर रहना है उनके दुखों में उनको सांत्वना देने के लिए, और अगर तुम आंसू बहाओगी तो तुम उनके दुखों को और बढ़ाओगे। तो इसीलिए हमारे सेवा के लिए, मैं जानता हूँ कि तुम दुखी रहोगे, मैं भी दुखी हूँ, पर हमारे भावनाओं से हमारी सेवाएं अधिक महत्वपूर्ण है और हमारी सेवाओं के लिए हमें हमारे भावनाओं को प्रकट नहीं करना है। और फिर चुर्मिला सुनती है तो फिर वो कहती है, ये आपने मुझे आपसे अलग रहने का आदेश दिया है वह बड़ा मुश्किल था, पर मैं कैसे तो कर लेती, पर आंसू न बहाना ये मेरे नियंत्रण की बात नहीं है, अगर आप आशीर्वाद दोगे तो ये संभव है। फिर पूछना लक्ष्मण सिर हिलाते हैं, फिर जाते हैं बाहर। जब बाहर जाते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र सीता के साथ भी और लक्ष्मण के साथ दशरथ महाराज की महल की ओर जा रहे हैं, और जब जा रहे हैं सारे अयोध्यावासी उनके चारों ओर आ जाते हैं और सब रामचंद्र को बोल रहे हैं कि आप जंगल मत जाओ, आप जंगल मत जाओ। और फिर यहाँ पे दशरथ महाराज जो समय का वो इतना भयावह समय है उसकी प्रतीक्षा करते हैं, उसकी प्रतीक्षा उसका विचार करते हुए लग रहा था उनके सिर पे कोई वज्र का प्रहार हो रहा है, पर वो भी समय आ रहा है। और फिर वो सोचते हैं अभी क्या करना है और बड़ा भाव विभोर हो गया। तो लक्ष्मण सीता और प्रभु श्री रामचंद्र आ जाते हैं दशरथ महाराज के महल में। दशरथ महाराज के महल में जब आ जाते हैं तो फिर प्रभु श्री रामचंद्र प्रणाम करते हैं और कहते हैं अपने पिताजी से, हे पिताजी, मुझे आदेश दे दीजिए ताकि मैं जंगल में जा सकूं। तो दशरथ महाराज बोलते हैं, हे राम, तुम्हें जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वास्तव में तुम्हारा युवराज बनने का पूरा अधिकार है, पर मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं अभी वो वास्तव में कैके से इतना क्रोध हो जाते हैं, मैं स्त्री, वो अपने कैके रानी, कैके को रानी नहीं बोलते, कैके नहीं बोलते, स्त्री के प्रभाव में आके मैं इतना अधर्मिक कार्य कर रहा हूं कि तुम्हें जंगल में भेज रहा हूं। तो मेरे पुत्र, मेरा तुम्हें एक सलाह है, दशरथ महाराज अभी पूरा भाव विभोर हो गए, तुम ऐसे करो कि तुम मेरे खिलाफ बन बोल दो और मुझे गिरफ्तार करके मुझे कैद में डाल दो, और जो राज्य तुम्हारा है वह तुम स्वीकार कर लो। तो यह सुनकर कैके बड़े क्रोध हो जाती है, पर दशरथ महाराज की ओर देख ही नहीं रहे। दशरथ महाराज कहते हैं, समाज बताते हैं, तो प्रभु श्री रामचंद्र बोलते हैं, हे पिताश्री, मैं राज्य स्वीकार करने का एक ही उद्देश्य था कि आपको प्रसन्न करूं, और अगर इस राज्य के राज्य को प्राप्त करने के लिए आपके खिलाफ मुझे बंद पुकारना पड़े तो उससे बेहतर है कि मैं नरक में चला जाऊं। पिताश्री, आपके वचन को सत्य करना यही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है, तो मैं जरूर इसका पूर्ति करूंगा। और जब प्रभु श्री रामचंद्र ऐसे बोलते हैं तो दशरथ महाराज सुन के बेहोश हो जाते हैं। जब बेहोश होकर गिर जाते हैं तो फिर कौशल्या सुमित्रा वहाँ पे आ गई, तो वो तुरंत दशरथ महाराज को अपने गोद में लेके उनको थोड़ा पानी छिड़काने लगते हैं। तो यह सुन के सुमंत्र बड़े क्रोध हो जाते हैं। सुमंत्र जो अपने बचपन से, सुमंत्र के पिताजी थे वो दशरथ महाराज के पिताजी के मंत्री थे, तो बचपन से वो दशरथ महाराज के साथ ही थे, और भले ही वो एक तरह से उनके सेवक है, वो राजा है और ये मंत्री है, पर वो मित्र के समान भी थे। तो दशरथ महाराज के इस दुख को देखकर वो बड़े क्रोध हो जाते हैं, बोलते हैं, हे कैके, क्या तुम्हारा हृदय है कि जगह पे एक पत्थर आ गया है तुम्हारे सीने में? क्यों, किस तरह से अपने पति को इतने दुख में देखकर तुम्हारा हृदय पिघल नहीं रहा है? तुम इतनी निष्ठुर कैसे बन गई हो? जो शास्त्रों में अनंत काल से बताया है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बन रहा है, तो तुम अपने स्वार्थ के लिए शास्त्रों के खिलाफ जा रहे हो, अपने पति के खिलाफ जा रहे हो, कि तुम इससे कुख्यात बन जाओगे, विख्यात नहीं, कुख्यात बन जाओगे, तुम्हारी जो अपकीर्ति है वो सनातन काल के लिए बोली जाएगी। तुम इस तरह से घृणास्पद कार्य मत करो। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे मुख से ऐसे वचन जब निकले कि राम को वनवास में भेजे, उस राम को जो सब गुणों से संपन्न है, जो सबको प्रिय है, जो कभी किसी के प्रति कोई बुरा नहीं बोलता है, न केवल कोई कभी किसी के उसके प्रति बुरा नहीं बोलते हैं, ना वो किसी के प्रति बुरा बोलते हैं, ऐसे राम को वनवास में जाओ भेजो, ऐसे वचन निकलने के पहले तुम्हारी जिह्वा टूट टूट के गिर कैसे नहीं गई? अभी भी समय नहीं गया है, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम अपना जो धूर्त उद्देश्य उसको त्याग करो और अपने पति के दुख और विनाश का कारण मत बनो और खुद के अपकीर्ति का कारण मत बनो। सुमंत्र के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं इस तरह से जब वो बोल रहे होते हैं, पर कई कई वास्तव में क्या होता है, जब व्यक्ति किसी वासना के प्रभाव में आता है तो वो वासना की प्राप्ति के अलावा और किसी चीज की का ध्यान ही नहीं रहता है उसको। तो ऐसे हो गया था कई कई का, तो उसके वचनों का कुछ प्रभाव नहीं है वहां पे। और फिर दशरथ महाराज ये सब सुमंत्र की बातें जब बोल रहे थे तो होश में आ जाते हैं, और तभी दशरथ महाराज बोलते हैं सुमंत्र को, सुमंत्र तुम ऐसे करो कि हमारे जो रथ है अनेक रथों को राम के साथ भेजो, और जो जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं उनको उनको आगे बोलो, उनको संदेश भेजो कि ऐसी जगह ढूंढे जंगल में जहाँ पे राम बड़े आनंद से और सुविधा के साथ रह सकते हैं। और इतना ही नहीं, बोले कि हमारे राज्य का ज़्यादा जो शस्त्र है, जो खजाना है, वह सब साथ में तुम राम के साथ भेजो, और न केवल खजाना पर सारा जो सामग्री है वह भी भेजो, और न केवल ये सब भेजो, तुम मेरे भी जाने की योजना बनाओ। हाँ, सब जंगल में जाएंगे और हम जंगल को अयोध्या बना देंगे, और अयोध्या जंगल बन जाएगा, और कैकेयी इस जंगल बने अयोध्या पे राज्य करेगी। जब दशरथ महाराज ऐसे सुनते हैं तो कैकेयी बड़ी क्रोध होती है, तो बोले कि तुमने जब वचन दिया था कि भरत राजा बनेगा, वो एक समृद्धशाली राज्य का राजा बनेगा, एक जंगल का राजा नहीं बनेगा। तो ये सुन के दशरथ महाराज क्रोध हो जाते हैं कि हे धूर्त स्त्री, जब तुमने राज्य मांगा था तो तुम्हें मांगना चाहिए था कि राज्य की सारी संपत्ति भी होनी चाहिए, तुमने वो नहीं मांगा है इसलिए तुम्हें राज्य मिलेगा, राज्य की संपत्ति नहीं मिलेगी। तो इस तरह सुनते हैं तो कई कई क्रोध होकर बोलते हैं कि तुमने इतना बड़ा बोझा मेरे सीने पर लगा दिया है, और फिर ये बोझा लगाने तुम्हारे जो वचन है वो एक चाबुक के फटके के समान है, मैं तुम्हारे प्रति बिल्कुल परवाह नहीं करता, मैंने तुम्हें वचन नहीं दिए होते तो मैं कदापि राम को वनवास में नहीं भेजता, पर मैं मेरे वचनों से बद्ध था इसीलिए मैं वनवास में भेजना पड़ रहा है राम को, पर ये मैंने दो वचन पूरे कर लिए हैं, अभी मेरा और तुम्हारा संबंध खत्म हो गया है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में ठुकरा देता हूँ, मेरा और तुम्हारा आज से कोई संबंध नहीं है। और इस तरह से बोलते हैं तो दशरथ महाराज पुनः बेहोश रहते हैं, और तुरंत कह कही कौशल्या और सुमित्रा उनको पुनः होश में आती है, और प्रभु श्री रामचंद्र जाते हैं उनके सामने और बोलते हैं हे पिताश्री, मैं अगर जंगल जा रहा हूँ तो वास्तव में राज्य का सामग्री और ऐश्वर्य जंगल में लेके जाने का क्या फायदा है। और यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र क्या कहते हैं दशरथ महाराज सांत्वना देने के लिए, वास्तव में आप कह रहे हैं कि कहके के कारण मुझे बड़ा दुख होने वाला है, यहाँ पे मुझे कुछ भी दुख नहीं दिखाई दे रहा है, बोल रहे वास्तव में मुझे आपके वचन को सत्य साबित करने का मौका मिल रहा है, मुझे मेरे जीवित होते हुए मेरे छोटे भाई को राजा बनने का मौका देने का, राजा बनाने का मौका मिल रहा है, मुझे जंगल में जाके जो ऋषि मुनियों के संघ के द्वारा जो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता हूँ वो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने का मौका मिल रहा है, और मुझे मेरी माँ के समान जो कहके ही है उसको प्रसन्न करने का मौका मिल रहा है, मुझे इतने सारे मौके मिल रहे हैं, मैं कैसे इन मौकों को गंवा सकता हूँ। तो वास्तव में ये मौके नहीं है, ये एक तरह से दुख है, प्रभु श्री रामचंद्र अपने वचनों से दुख सांत्वना दे रहे हैं। तो आधुनिक लोग कहते हैं कि हमें सकारात्मक विचार करना चाहिए, तो प्रभु श्री रामचंद्र आदर्श हर एक दृष्टि से सकारात्मक विचार में भी आदर्श है। क्या बोल रहे हैं कि मुझे मौका मिल रहा है, साधारणतः जो गृहस्थ होते हैं वो जब सारे गृहस्थ के कर्तव्य संपन्न होने के बाद बाद में उनको जंगल में जाके वानप्रस्थ के समय संतों का संग मिलता है, बोल रहे कि मुझे अभी जवानी में संतों का संग मिल रहा है। साधारणतः बड़ा भाई होता है तो पहले वो राजा बनता है, फिर उसके बाद में छोटे भाई को जब वो जंगल में जाएगा राजत्याग करके तो छोटा भाई को राजा बनाने का मौका मिलेगा, बोले कि मुझे मेरे छोटे भाई को राजा बनाने का मौका अभी मिल रहा है, और सोच रहे कि मेरे माता और पिता अभी तक वो कह कह के अपने माँ के समान समझ रहे हैं, और उनको प्रसन्न करने का भी मौका मिल रहा है, पिता के वचन को सत्य साबित करने का मौका मिल रहा है। तो इस तरह से जब प्रभु श्री रामचंद्र के वचन सुनते हैं तो दशरथ महाराज कुछ भी बोल नहीं पाते हैं भाई, और फिर दशरथ महाराज तभी प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं कि वास्तव में राज्य का ऐश्वर्य की बात क्या है, वास्तव में जो राजा का पोशाक होता है वो भी मुझे पहनना जरूरी नहीं है। तो कहते हैं कि मैं राजा का पोशाक त्याग करके जो तपस्वी का पोशाक है स्वीकार करूंगा, तो कहते हैं हाँ अच्छी बात है, मैंने तपस्वी का पोशाक जो है पहले तैयार करके रखा है, तो अभी तक इतना सारा हो रहा है, तो ये वास्तव में कहते हैं कि भगवान कहते हैं भोगेश्वर्य प्रसक्ता ना तया अपहृत चेतसा, यार भोग और ऐश्वर्य का भाव आता है तो व्यक्ति की बुद्धि जो होती है साधारण बुद्धि है वो भी भ्रष्ट हो जाती है, तो कह कह के इस तरह से बुद्धि पूर्णतया भ्रष्ट हो जाती है। और फिर वो जो पेड़ों का जो उससे बनाया हो जो विषा पोशाक होता है वो लेके आते हैं वेश, तो लक्ष्मण और प्रभु श्री रामचंद्र वो पहले विश्वामित्र के साथ जंगल में गए हैं, उस समय जानते हैं वो कैसा है ऐसा वस्त्र पहनने हैं तो पहन लेते हैं, तो पर सीता कभी जंगल में गई नहीं है, वो राजमहल में ही रही है, तो वस्त्र को देखती है उसको कैसे पहनना है पता ही नहीं उनको। तो फिर जब उनको सीता को के कोमल शरीर पे वो जो तपस्वी के वस्त्र देखते हैं तो वहाँ पे जो उनके कुलगुरु होते हैं वशिष्ठ, और वशिष्ठ की जो पत्नी होती है वो क्रोध हो जाते हैं, और वो कैकेयी को समझाने के लिए कैकेयी को डांटने लगते हैं, पर कैकेयी की बुद्धि अभी समझने के पूरे परे चले गई है, कुछ समझ नहीं आते। तो प्रभु श्री रामचंद्र सीता को वो पोशाक पहनाते हैं और फिर वो बाहर निकलते हैं, और सुमंत्र को बोलते हैं सुमंत्र आप रथ तैयार करो, और फिर रथ पे बैठ जाते हैं, और फिर रथ को चलने को लगते हैं तो दशरथ महाराज इस समय बेहोश हो गए। तो प्रभु श्री रामचंद्र चरण कमलों को स्पर्श करते हैं और सोचते हैं कि वो उनका एक तरह से हृदय से इच्छा होती है कि मैं रुक जाऊं ताकि दशरथ महाराज का आशीर्वाद लेके जाऊं, पर वो सोचते हैं दशरथ महाराज इतने दुखी है, मैं जितना ज़्यादा समय तक यहाँ पर रहूँगा उतना उनका दुख और बढ़ेगा और कभी भी वे आनंद से तो मुझे इजाज़त नहीं देंगे। तो वो सोचते हैं चलो निकल जाते हैं। और जब रथ जाने लगता है तब दशरथ महाराज होश में आता है। दशरथ महाराज देखते राम कहाँ है और देखते कि रथ जा रहा है, तो राम रथ के पीछे दौड़ने लगते हैं और रुको रुको रुको, और वो देखते हैं सुमंत्र रुक जाओ। और फिर जब सुमंत्र अपने राजा के आदेश को सुनते हैं तो फिर वो बोलते हैं रुक जाओ, तो दशरथ महाराज बोलते हैं रुको, तो रामचंद्र बोलते हैं रुको मत, आप चलो आप आगे चलो। तो फिर सुमंत्र मुँह जाते हैं, एक और राजा का आदेश है दूसरे राजकुमार का आदेश, क्या पालन करें। तो फिर प्रभु श्री रामचंद्र बोलते हैं हे दशरथ हे सुमंत्र, आप सोचो अगर जितना मैं रुकूंगा उतना दशरथ महाराज का दुख और बढ़ेगा, तो कृपया आप रुको मत, आप और तेज से चलो। तो दशरथ महाराज जोर से रुको रुको चिल्लाते हैं। तो सुमंत्र बोलते हैं मैं राजा के आदेश का पालन कैसे नहीं कर सकता। देखो कि तुम राजा का आदेश पालन करना चाहते हो पर तुम राजा के हित के बारे में सोचो, महाराज को और दुखी देखना चाहते हो तुम। बोलते तुम बाद में बोल दो उनसे कि तुमने उनके वचन सुने नहीं, अगर पूछ लेंगे तो, और तुम जल्दी से चलो अभी। और दशरथ महाराज जब दौड़ रहे होते तो फिसल जाते हैं और गिरते हैं, और जब फिर जाते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं वहाँ पे। और फिर जो कैचे कौशल्या सुमंत्रा दौड़ दौड़ के आके उनको पकड़ लेते हैं। और जब दशरथ प्रभु श्री रामचंद्र जा रहे होते हैं तो अयोध्यावासी जो होते हैं वो उनके पीछे आते हैं, अगर तुम जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। और जो कई वृद्ध ब्राह्मण होते हैं तो वो ब्राह्मण प्रभु श्री रामचंद्र को देखते हैं इस तरह से जा रहे थे, बोलते मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, पर ये वृद्ध होते हैं और दशरथ महाराज तो क्षत्रिय होते हैं, तो वृद्ध भी हो गए तो क्षत्रिय शरीर तो उनका तंदुरुस्त होता है, ब्राह्मण जो होते हैं वृद्ध होते हैं तो वो दौड़ नहीं पा रहे होते। और जब प्रभु श्री रामचंद्र देखते हैं कि इस तरह से ये ब्राह्मण मेरे पीछे दौड़ रहे हैं और इतने वो थक रहे उनका शरीर काँप रहा है, सुमंत्र को बोलते हैं कि आप रथ को भी धीरे कर लो। और फिर वो बोलते हैं कि ये उचित नहीं है कि अगर ब्राह्मण मेरे पीछे आ रहे वो पैदल चल रहे और मैं रथ पे चल रहा हूँ। तो इस समय भी वो नीचे उतर जाते हैं और फिर वो सारे अयोध्यावासियों को बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप सब मुझसे प्रेम करते हो, पर मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आप मुझसे सही में प्रेम करते हो तो फिर आप देखो कि जो मेरे लिए प्रिय है हमारे पिताजी महाराज दशरथ, जिन्होंने आप सबका अपने पुत्र के समान देखभाल आज तक की है, तो आप कृपया उन्हें दोष मत दो, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। और प्रभु श्री रामचंद्र भी क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भले ही ये अयोध्यावासी है चले भी जाएंगे तो उन्हें दशरथ महाराज के प्रति नफरत नहीं करनी चाहिए, उनका क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में जो राजा है मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, राजा आपसे प्रेम करते हैं, पर ये कर्तव्य के कारण उन्हें ऐसे करना पड़ रहा है, तो कृपया आप वापस जाओ और जो बहुत ही विकट परिस्थिति है उस समय में आप नागरिक हो, नागरिक का कर्तव्य है कि राजा को मदद करें, न कि राजा की निंदा करें इस समय। तो हम ये सारे प्रसंग में देखते हैं कि कैसे है प्रभु श्री रामचंद्र जो खुद की भावनाओं को प्रकट नहीं होने देते हैं और हमेशा दूसरों की भावनाओं में कम से कम दुख कैसे पहुंचाए इसकी चिंता कर रहे हैं, तो एक भी बार वे कैकेयी को दोष नहीं देते हैं। और अपने पिताजी को दोष देने के बाद तो दूर ही है, और वो अगर कोई उनको दे देता है उनको भी बोलते हैं कि आप दोष मत दो उनको। तो वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र भगवान है पर वो इस भौतिक जगत में भी आते हैं, तो एक आदर्श मानव के रूप में दिखाते हैं हमें कि इस दुनिया में सबके जीवन में विपत्ति आएगी। वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र तो कोई बुरा कर्म नहीं किया है, उनमें के जीवन में विपत्ति आने के कोई कारण भी नहीं है। हमारे जीवन में कोई बुरा घटनाएं होती है तो हम समझते हैं कि हमारे ही बुरे कर्म के कारण आ रहे हैं, तो प्रभु श्री रामचंद्र का कोई बुरा कर्म नहीं है, फिर भी जब उनके जीवन में आ रहा है कुछ विपत्ति तो उसका कोई कारण नहीं है, तो कारण न होते हुए भी वो दोष नहीं दे रहे किसी को। हमारे जीवन में अगर कोई विपत्ति आती है तो वास्तव में हम ही दोषी है क्योंकि हमारे ही पूर्व कर्म है, फिर भी हम दूसरों को दोष देते हैं। तो वास्तव में दुनिया में दुख सबको आते हैं, तो रामायण से हमें दिखाया जाता है कि जो दुख भी आ जाएंगे तो हमें कैसे जो हमारे कर्तव्य है
उसे उचित रूप से करना है। और यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जो है, क्योंकि वे भगवान है तो इसलिए पति पत्नी पुत्र माता पिता ये सब संबंध दिव्य है। तो वास्तव में हमें अगर इन संबंधों को हमारे जीवन में उतारना है तो वास्तव में वही कर्तव्य निष्ठता न केवल हमारे परिवार वालों के प्रति पर हम भगवान के प्रति हमें दिखानी है, तो उससे हम भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। और जो दिव्य भगवत प्रेम है उसमें हम प्रगति कर वृद्धि कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते हम चर्चा करेंगे कैसे भगवान जंगल में जाते हैं, दशरथ महाराज लौट के आते हैं, दशरथ महाराज और कैकेयी का बातचीत, और फिर बाद में भरत महाराज और भरत और प्रभु श्री रामचंद्र की बातचीत, उसके बारे में हम चर्चा अगले हफ्ते करेंगे। तो श्लोक पुनः एक बार हम दोहराएंगे और फिर हम अंत करेंगे। सुमुखम सुहृदम सुलभम सुखदम सुखदम स्वनुजम च सुखाय ममोघशरम सुखाय ममोघशरम अपहाय रघुद्वहमन्यमहम रघुद्वहमन्यमहम न कथञ्चन कञ्चन जातु भजे चन कञ्चन गातु भजे। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामनवमी महामहोत्सव की, श्री वाल्मीकि रामायण की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, जय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।